आज है 7 जुलाई सन 65 की प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है प्रीतम आन मिलो। कोई कोई बात समझ पड़ी है, जो बच्चे समझते हैं कि राइट है। वैसे गीतों में भी राइट है। अब प्रियतम अक्षर तो ठीक कहा, तो होता है प्रिय, एक होता है अति प्यारा और एक होता है प्रियतम, माने जिससे ज्यादा प्यारा कोई होता नहीं। तो प्रियतम अक्षर तो ठीक कहा, परंतु जियरा बुलाए। अब जीव यानी शरीर तो बुलाते नहीं है, जीव में रहने वाली आत्मा बुलाती है। क्यों बुलाती है? क्योंकि आत्मा दुखी होती है तो बुलाती है। आत्मा तो कहा जाता है ना, आत्मा में खाद पड़ती है। कौन सी खाद पड़ती है? विकारों की खाद पड़ती है। जैसे सोने में अलाय पड़ता है, सोने में चांदी डाली जाती है, तांबा डाला जाता है, लोहा डाला जाता है, ऐसे आत्मा में भी 4 युगों में खाद पड़ती है। सतयुग में तो सोने समान आत्मा होती है, लेकिन कलाएं तो वहां भी कम होती जाती है ना, तो उतना शुद्ध सोना आत्मा नहीं रहती। त्रेता में चांदी की खाद पड़ती है, द्वापर में तांबे की खाद पड़ती है, कलयुग में लोहे की खाद पड़ती है। तो आत्मा जो सोने मिसल थी, वो अब तांबे मिसल भी नहीं रही। कैसी रह गई? लोहा मिसल, काली हो गई। कौन सी खाद पड़ती है? विकारों की खाद। माना वि माना विपरीत, कार माना कर्म करने वालों की। क्या?
विकर्म करने वालों।
जो विकर्म करने वाली आत्माएं हैं, उनके संग के रंग की खाद पड़ती रहती है आत्मा। आत्मा ही सतो प्रधान और आत्मा ही तमो प्रधान बनती है। सात्विक आत्माओं के संग से, सत्य बाप के संग से, सत्य प्रकृति के संग से सतो प्रधान बनती है। और तामसी आत्माओं के संग से तामसी आत्मा बनती है। सच्चा सोना ही फिर झूठा बनता है। ऐसा कब नहीं समझना आत्मा कोई निर्लेप है। साधु संत महात्मा क्या कहते हैं? आत्मा तो निर्लेप है, उसके ऊपर कोई लेप छेप नहीं चढ़ता। लेकिन नहीं, आत्मा के ऊपर ही लेप छेप चढ़ता है संग के रंग का। आत्मा माना मन बुद्धि। मन बुद्धि जैसे लोगों का संग करेगी, वैसी ही मन बुद्धि परिवर्तित होती जाएगी। निर्लेप मनुष्य इसलिए कह देते हैं क्योंकि समझते हैं आत्मा सो परमात्मा है। आत्मा ही यदि परमात्मा है, फिर तो लेप छेप लगने की बात होती नहीं, क्योंकि परमात्मा तो अभोक्ता है, अकर्ता है। तो वो समझते हैं कि आत्मा कुछ नहीं करती, जो कुछ करता है ये प्रकृति के 5 तत्व तो जड़ तत्व तो करते हैं। अब जड़ तो क्या करेगा?
कुछ नहीं
करते। आत्मा परमात्मा नहीं होती, अगर परमात्मा होती तो जरूर निर्लेप होती। तो मनुष्य बेचारे मुझे रुए हैं, लेकिन ये है किसकी मत? आत्मा सो परमात्मा, ये मनुष्यों की मत है। परमात्मा को ढूंढते रहे, कहीं भी नहीं मिला तो कह दिया हमारी आत्मा सो परमात्मा। ये रावण की मत है। क्या
रावण की मत?
रावण माना अनेक सिरों की मत है। अनेक सिर इकट्ठे होकर के ये आवाज लगा रहे हैं झूठी कि आत्मा सो परमात्मा। ईश्वर के अर्थ जो कुछ भी करते हैं, भक्ति आदि आदि, सब ईश्वर से मिलने के अर्थ करते हैं। अब ईश्वर से मिले कैसे? इनके लिए यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं, फिर भी ईश्वर तो मिलता नहीं है। क्या क्या करते हैं? यज्ञ प्रक्रियाएं करते हैं, हैं? उन यज्ञों में क्या करते हैं?
घी डालते
हैं,
स्वाहा करते हैं,
यज्ञ में आहुति चढ़ाते हैं। उस आहुति में आवाज क्या लगाते हैं?
स्वाहा,
स्वा हा, माने अपने को मारना जो है उसमें बड़ी मुसीबत आती है। कहाँ की बात? संगम युग में इस समय जो आत्माएं जीते जी मरती हैं ज्ञान में चलते हुए, उन्हें अपने विकारों को, अपने देह अभिमान को स्वाहा करने में बड़ी तकलीफ होती है। हाय, सब कुछ स्वाहा करना पड़ेगा। तन का अहंकार होता है, धन का अहंकार होता है, बुद्धि का अहंकार होता है, सब स्वाहा। तो उसकी यादगार है वो यज्ञ। तप करते हैं, शरीर को तपाते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, लेकिन वहां तो ईश्वर मिलता नहीं है। अगर ईश्वर मिलता तो फिर तीर्थों आदि पर भी नहीं जाते। मिल गया होता तो जाने की क्या दरकार? समझो कोई की मूर्ति से साक्षात्कार हो जाता है, कोई देवता की मूर्ति से साक्षात्कार हो जाता है, परंतु वो भी ईश्वर तो नहीं मिला ना, सिर्फ साक्षात्कार ही तो हुआ। जैसे कोई ने स्वप्न देख लिया, तो स्वप्न में देखा हुआ क्या सच्चा होता है? क्या
नहीं,
मिलता तो नहीं है। ईश्वर को सभी पुकारते हैं, हे पतित पावन, हे प्रियतम आओ, क्योंकि आत्मा को दुख होता है। शरीर को चोट लगती है तो आत्मा को दुख फील होता है। आत्मा शरीर से निकल जाती है, फिर शरीर को कुछ भी करो, आत्मा को कुछ भी नहीं होगा। शरीर के ऊपर कोई असर
नहीं
होता। आत्मा और शरीर कंबाइंड है तो शरीर क्षत विक्षत होता है, तो आत्मा को दुख होता है, तो आत्मा को फील होता है। भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारी आत्मा बनती है। श्रेष्ठाचारी ये पांच तत्वों का बना हुआ शरीर नहीं कहा जाता, आत्मा ही श्रेष्ठाचारी बनती है तो देवता कही जाती है, आत्मा ही भ्रष्टाचारी बनती है तो राक्षस कही जाती है। तुम बच्चे जानते हो सतयुग में कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि वहाँ माया का राज्य नहीं होता है, और यहाँ
माया का राज्य,
माया रूपी पांच विकारों का राज्य है। तुम पुरुषार्थ करते हो सतयुग में चलने के लिए, काहे के लिए पुरुषार्थ करते हो? सतयुग में जाने के लिए। इस दुनिया में धन संपत्ति मिल जाए उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करते हो?
नहीं,
बाबा से योग लगा ले, ہم کو لاکھ دو لاکھ کی لاٹری مل جائے تو نہیں ملے گی. ہاں یہ یوگ جو ہے جو پرماتما آ کر کے سکھاتے ہیں یہ پرمارتھ کا یوگ ہے, اس لوگ کے لیے نہیں ہے. کہاں کے لیے ہے؟ پر لوگ کی پراپتی کے لیے. اس لوگ کی پراپتی کے لیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اس لوگ میں تو جو بھی پراپتی ہوگی وہ الپ کال کی ہوگی, سدا کال کی پراپتی نہیں ہوگی. تم پرسارتھ کرتے ہو ستگ میں چلنے کی, وہاں مایا نہیں ہوتی. یہ مایا کا راج اب پورا ہونے والا ہے. ہوا کہ ہوا, منشیہ تو بیچارے کچھ بھی نہیں جانتے ہیں, وہ تو مایا میں لپت ہوئے پڑے. کہتے ہیں من کو شانتی نہیں. اس کو شانتی نہیں؟
من کو
شانتی نہیں. ارے من کو شانتی نہیں, من کو تو ایکاگر کرو تو شانتی ہوگی. من کو ادھر ادھر ساری دنیا میں بھٹکاتے رہو گے تو شانتی کہاں سے ہوگی؟ یہ نہیں کہتے کہ آتما کو شانتی نہیں, کہتے من کو شانتی نہیں. بیچارے جانتے نہیں ہیں. کیا نہیں جانتے؟ کہ من بدھی کو ہی تو آتما کہا جاتا ہے. آتما کوئی دوسری چیز
نہیں
ہے. من کے لیے کہہ دیتے ہیں. اب آتما میں من بدھی ہے, آتما کہتی ہے ہم کو شانتی چاہیے. ایسے نہیں کہ من کی شانتی چاہتے ہیں, آتما شانتی چاہتے ہیں. ہم آتما پرم دھام سے آتی ہے شریر میں. یہ شریر بگڑیل ہے, اس میں وکرتی آتی ہے. لیکن ہم آتما کہاں سے آتی ہیں؟ پرم دھام سے. جہاں آتما ایک جیسی اسٹیج میں رہتی ہے, نسنکلپ اسٹیج میں رہتی ہے. آتما کو اس دنیا میں آنے کے بعد آرگنس ملتے ہیں. آتما کہتی ہے کہ پریتم آنے ملو. کب کہتی ہے؟ جب آتی ہے آتما تو ساتوک اسٹیج میں آتی ہے, تب نہیں کہتی. جب انیک جنم لیتے لیتے سنگ کے رنگ میں آتے آتے تامسی بن جاتی ہے, بہت دکھی ہوتی ہے, تب کہتی ہے کہ ہے پریتم آن ملو. ہمارا دیرا دکھی ہے. اب جیو اور آتما میں رات دن کا فرق ہے. آتمک اسٹیج میں استھت ہو جائے تو شانتی ہی شانتی. اور جیون میں جو یہ جیوت شریر ہے آتما ہونے کی وجہ سے, اس جیون میں جب ہم اپنے کو دیکھتے ہیں, مانے دیہبان میں جب ہم اپنے کو دیکھتے ہیں تو اشانتی ہوتی. آتما سمجھنے سے شانتی اور دیہ سمجھنے سے اشانتی. جیو کسے کہا جاتا ہے؟ آتما کسے کہا جاتا ہے؟ دیہ میں جب آتما پرویش کرتی ہے تو جیو آتما ہے, جیوت آتما. کیسی آتما؟ جیوت آتما. اور جس دیہ کو جب آتما چھوڑ دیتی ہے تو آتما الگ اور یہ شریر مردہ الگ ہوتا ہے. آتما شانت دیش میں رہتی ہے تو شانت ہے. وہاں پانچ تتوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا, کیونکہ وہاں پانچ تتو ہیں ہی نہیں. من اور بدھی آتما کے آرگنس ہیں اور یہ ہے شریر کے آرگنس. ہاتھ پاؤں ناک آنکھ کان یہ سب شریر کے آرگنس ہیں. آتما کے آرگنس ہیں من, سنکلپ شکتی, سوچنے وچارنے کی شکتی, بھاونا کرنے کی شکتی, और बुद्धि, फैसला करने की शक्ति, निर्णयात्मक जो शक्ति है वो आत्मा के ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन है। इन बातों को और कोई नहीं जानते। वो साधु संत महात्माएं आत्मा का इस प्रकार का परिचय नहीं देते। वास्तव में आत्मा का नाम लेना चाहिए। आत्मा शांति को कहा जा, आत्मा शांति चाहती है, चाहने की बात नहीं है। वास्तव में आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। अब आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा विकारों पर जीत पहन रही है। ऐसे नहीं कि मन पर जीत पहन रहे हैं। किसके ऊपर जीत पहन रहे हैं?
मन।
जो पांच विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिन्होंने आत्मा को दबा रखा है, उनके ऊपर आत्मा राजयोग बल से जीत पहन रही है। माया पर जीत पाते हैं परमपिता परमात्मा की श्रीमत से। इन गुरुओं की मत पर चलते चलते तो आत्मा पतित बन गई। अब हम परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलने से पावन बन रहे हैं। तो मन को शांति चाहिए। ये कहना रांग हो जाता है कि मन को शांति चाहिए। क्यों? कि मन रूप आत्मा जो है वो तो शांत स्वरूप है ही, चाहिए नहीं। मन बुद्धि रूपी आत्मा अगर हम बन के बैठ जाएं, ये शरीर को भूल जाएं, तो आत्मा शांत स्वरूप ही है। तो ये कहना रंग हो जाता है। ऐसे नहीं कहते मन को सुख दो, आत्मा शांति मांगे, क्योंकि उनको अपना शांति धाम याद आता है। अभी तुम बच्चे आत्मा और परमात्मा का भेद जान गए। क्या भेद जान गए? क्या भेद जान गए हो? आत्मा में और परमात्मा में क्या भेद है? क्या भेद है?
आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, परमात्मा नहीं आते।
परमात्मा, परमात्मा कहा माने आत्माओं में जो परम शक्ति वाला है। आत्माओं के बीच में जो परम शक्ति वाला है। परम शक्ति वाला कौन है?
शिव।
शिव बाबा,
शिव परमात्मा,
शिव परमात्मा, शिव बाप या शिव परमात्मा,
शिव पिता
या शिव बाबा?
शिव बाबा
है?
शिव बाबा,
शिव बाबा। अच्छा, बाबा किसको कहा जाता है?
निराकार और
साकार और निराकार के
मेल को बाबा कहा जाता है। तो निराकार तो शिव ज्योति बिंदु, और साकार
बाबा।
बाबा
साकार जिसमें प्रवेश करता है, प्रजापिता, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता। तो वो निराकार सारी मनुष्य सृष्टि के पिता में जब प्रवेश करता है तो कहा जाता है परम पिता परम आत्मा।
परम पिता परम आत्मा,
परम पिता वो सब आत्माओं का पिता है। क्या?
सब आत्माओं का पिता।
उसके पार्ट के लिए ये नहीं कह सकते कि वो परम पार्ट बजाने वाला है। क्या? वो जितनी भी आत्माएं हैं, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं, उन सब आत्माओं के बीच में परम पार्ट बजाने वाला नहीं है। क्यों? वो तो 5000 वर्ष इस सृष्टि पर आता ही नहीं पार्ट बजाने के लिए। उसकी तुलना किसी के साथ नहीं जा सकती। जिसकी तुलना ही किसी के साथ नहीं की जा सकती, उसको फिर परमात्मा कैसे कह दिया? उसका ये कैसे बता दिया कि वो परम पार्टधारी है? हाँ, जिसमें वो प्रवेश करता है वो हीरो पार्टधारी जैसा पार्ट कोई नहीं बजाता। वो हीरो पार्टधारी और जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं उनके बीच में परम पार्ट बजाता है। इसलिए उसको कहा जाता है परम आत्मा। लेकिन वो परमात्मा साबित तब होता है जब वो सुप्रीम सोल बाप शिव उसमें प्रवेश करता है। तो अभी तुम बच्चे आत्मा और परमात्मा के भेद को जान गए। बाप कहते हैं हे प्रियतमाए, अपने प्रियतम को घड़ी घड़ी याद करती रहो। क्या?
अपने
प्रियतम और प्रियतमा, माने पति और पत्नी का जो संबंध है वो बिंदु बिंदु आत्माओं के साथ नहीं बन सकता। बिंदु बिंदु आत्माएं सब आपस में भाई भाई हैं। प्रियतम और प्रियतमा तब कहा जाए जबकि वो साकार शरीर में प्रवेश करे। तो साकार शरीर में प्रवेश करने के बाद जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब हैं उसकी प्रियतमाएं। प्रियतमाएं जब तक उसने साकार में प्रवेश नहीं किया तब तक उसका सिर्फ एक ही संबंध था, क्या? नहीं, बाप और बच्चे। आत्मा 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 रूपी बच्चे, वो सब बच्चे हैं। बच्चियां उनमें कोई कोई नहीं, आत्मा सब पुरुष, सब बच्चे भाई भाई। और वो परमपिता परमात्मा बाप, पति भी नहीं, क्या?
बाप।
वो जब साकार तन में आता है तब प्रियतम प्रियतमाओं का संबंध कहा जाता है। तो कहते हैं हे प्रियतमाएं अपने प्रियतम को घड़ी घड़ी याद करती रहो। प्रियतम भी जानते हैं कि इन पर माया का बहुत वैलोर है। ये सब सीताएं माया की जेल में फंसी पड़ी, घड़ी घड़ी माया भुलाए देती है और इनको देहवान में लाए देती है। आत्मा को पहचान मिली है, हम शांत स्वरूप है। बाप ने आकर ये पहचान दी है, आत्मा का स्वधर्म शांत है। स्वधर्म को भूलने से आत्मा दुखी होकर के पुकारती है। घड़ी घड़ी हम स्वधर्म को भूल जाते हैं तो पुकारते हैं, क्या? प्रियतम आने मिलो, नहीं तो। अगर हम आत्मा को न भूलें तो जैसे हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा शिव भी क्या है? ज्योति बिंदु आत्मा है। तो जहाँ ज्योति बिंदु आत्मा की यादगार है, ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि में बैठी हुई है, तो परमात्मा तो याद आ ही जाता है। अगर आत्म की स्मृति नहीं है तो परमात्मा की भी स्मृति नहीं आ सकती। हमको अपनी शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए। शांति के बाद फिर होता है सुख, क्यों? पहले सुख क्यों नहीं है? पहले आत्मा शांति क्यों चाहती है, सुख क्यों नहीं चाहती? सुख बड़ी चीज है या शांति बड़ी चीज है?
शांति बड़ी चीज है।
क्यों?
क्योंकि मन इधर उधर भटकता है, इसलिए शांति चाहिए।
तो देवताओं को सत्युग में सुख होता है?
सुख होता है।
तो उन्हें शांति नहीं होती क्या?
शांति होती है।
शांति भी होती है और सुख भी होता है, तो उनका सुख बड़ा हुआ ना, उनको सुख में ही शांति समाई हुई। तो फिर शांति पहले क्यों?
आत्मा का स्वधर्म शांति,
आत्मा का स्वधर्म,
आत्मा का स्वधर्म शांति है। तो सत्युग में शांति भी तो होती है,
होती है।
बात तो सुख भी होता है, शांति भी होती है।
रावण के संगुल से बचने के लिए,
हाँ, जैसे एक हाथ जल रहा हो आग में और दूसरा हाथ रसगुल्ला आ रहा हो हाथ में,
तो पहले चलते हुए हाथ को उठाएंगे।
तो पहले आदमी क्या चाहेगा?
क्यों?
पहले रसगुल्ला खा लेना,
चलता है ना हाथ।
जब बुखार आता है ना तो आदमी को कुछ अच्छा खाने के लिए नहीं लगता, क्योंकि आत्मा अशांत है। और जब बुखार उतर जाता है तो भूख लगती है, कुछ अच्छा अच्छा खाने को मिले, है ना? तो दुख में कोई सुख नहीं चाहता। जब दुखी है आत्मा, अशांत है, तो वो पहले क्या चाहती है? कि आपको शांति मिले। जब शांति मिल जाती है तब इच्छा होती है सुख भी मिले। तो शांति के बाद फिर सुख आता है। पहले शांति जरूरी है, बाद में सुख भी जरूरी है। सन्यासी लोग भी ड्रामा के राज को तो जानते नहीं है। क्या ड्रामा है? ड्रामा में पहले सुख है, बाद में
शांति है
ना, दुख है। बाद में दुख आता है, फिर जब दुख आता है तब शांति मांगते हैं। क्या ये ड्रामा जो बना हुआ है हर मनुष्य आत्मा के लिए? हर मनुष्य आत्मा पहले सुख भोगती है, फिर दुख में आती है। जब ज्यादा दुखी हो जाती है तो शांति मांगती है। अशांत आत्मा दुख में अशांत आत्मा शांति मांगती है और शांत देश में जाने के बाद फिर सुख में आती है। तो ये शांति धाम से सुख धाम और सुख धाम से दुख धाम और दुख धाम से फिर शांति धाम, ये आने जाने का चक्कर लगा रहता है। कैसा चक्कर है, क्या क्या चक्कर है? पहले पहले शांति धाम जाती है, अभी की बात करो। पहले हम क्या चाहते हैं? अभी हम जाएंगे शांति धाम, पहले आत्मा शांत हो जाए। अभी जो हम कह रहे हैं ना, हम स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे,
पहले शांति धाम में।
नहीं नहीं नहीं, अभी जो रौरा बना रखे है वो हमने देखा नहीं है क्या? इस दुनिया में जो महाभारी महाभारत गृह युद्ध होता है ना, खून की जो नदियां बहती हैं, वो नदियां बहने के समय इतना दुख होता है, इतना आत्माएं तंग होती है कि स्वर्ग का नाशा सारा उड़ जाता है। तब आत्मा क्या मांगती है?
शांति।
हमें शांति चाहिए। तो प्रियतम आन मिलो और आकर के हमको पहले शांति देश में ले जाओ। तो सन्यासी लोग ड्रामा के राज को नहीं जानते हैं, इस ड्रामा में क्या राज है, कैसे पहले हम शांति धाम जाते हैं, फिर सुख धाम आते हैं, सुख धाम से फिर दुख धाम में आ जाते हैं, फिर दुखी होते होते आत्मा बहुत दुखी हो जाती है, तो फिर हम शांति धाम जाते हैं, चाहते हैं। शांति दोष को भी वो नहीं जानते हैं। तुमको पक्का निश्चय है कि हम आत्मा शांति देश की रहने वाली है, हमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया। वो तो कहते हैं आत्मा ने 84 लाख योनियों में चक्कर लगाया, और हम जानते हैं आत्मा ने 84 लाख योनियों में चक्कर लगाने की बात नहीं हो सकती। 84 लाख योनियों में अगर कोई चक्कर लगाए तो आत्मा अपने पार्ट को भूल जाएगी, याद ही नहीं रह सकती। और यही उन्होंने चालाकी की, उन्होंने देखा कि 84 लाख योनियां अगर हम बता देंगे तो कोई हमसे पूछेगा नहीं कि 84 लाख योनियों में आत्मा ने कैसे चक्कर लगाई। तो ये उन्होंने युक्ति निकाली कि आत्मा 84 लाख योनियों में चक्कर लगाने के बाद फिर मनुष्य का जन्म लेती है। लेकिन ऐसी बात तो है नहीं। क्या आम का बीज आम का ही दरख्त बनेगा, आम का ही फल देगा, बबूल का पेड़ बबूल का ही दरख्त बनेगा और बबूल की उसमें फली निकलेगी। ऐसे नहीं है कि जानवर की आत्मा मनुष्य बन जाए और मनुष्य से कीड़ा मकोड़ा बन जाए। क्या जैसा बीज होगा वैसा फल होगा। तो आत्मा ने सिर्फ 84 जन्म लिए, ये मनुष्य आत्माओं की बात है। मनुष्य आत्मा जास्ती से जास्ती 84 जन्म लेती है और कम से कम एक जन्म लेती है। अभी हमारा पार्ट पूरा होता है, ये आत्मा कहती है, जानते हो हम आत्मा परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। क्या
परमपिता परमात्मा से वर्षा ले?
अभी हम आत्माएं जो परमात्मा बाप के बच्चे हैं, वो परमात्मा बाप से अपना शांति का वर्षा ले रहे हैं। प्रियतम हमको मिला हुआ है जो इस सृष्टि पर हर आत्मा के लिए सबसे जास्ती से जास्ती प्यारा है, वो प्यारा प्रियतम आत्मा को मिला हुआ। किसको मिला हुआ है?
हम आत्मा को।
देहधारियों को मिला हुआ है?
नहीं नहीं।
देहभानियों को मिला हुआ है कि आत्माभिमानियों को मिला हुआ है?
आत्माभिमानी।
और आत्माभिमानी वो ही बन सकते हैं जिनको आत्मा का परिचय मिला हुआ हो। तो हम आत्माओं को, जो आत्माएं आत्माभिमानी बन चुके हैं, उनको परमात्मा आकर मिल चुका है। सबका प्रियतम एक है, भक्ति मार्ग में सब प्रियतम को याद करते हैं, एक का इनाम लेते हैं। तुम सब समझते हो हमको प्रियतम मिला है, अब इस मधुबन में साधारण तन में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं?
साधारण में,
मधुबन। कहाँ मधुबन में कहाँ बैठे हैं? माउंट आबू में मधुबन कहा जाता है, नाम दिया।
नहीं नहीं,
तो माउंट आबू में तो फिर नहीं बैठे, फिर मधुबन किसे कहा जाए? बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। कंपिल को मधुबन कहा जाए, फरुखाबाद को मधुबन कहा जाए, दिल्ली को कहा जाए, चंडीगढ़ को कहा जाए, ऐसे नहीं। क्या मधुबन की परिभाषा बेहद में बताई है। मधु माने जिनके अंदर चेहरे में, बातचीत में, आँखों में मिठास भरा हुआ, क्या हो?
मिठास भरा हुआ,
मधु की तरह मिठास भरा हुआ हो। और बन माने जिनकी आत्मा में, बन माने जंगल की तरह शांति भरी हुई, बन माने
जंगल
की तरह शांति, निर्लेप, किसी से कोई लगाव नहीं, आत्मा शांत। तो दो बातें जहाँ भी हैं वहाँ मधुबन, ऐसे मधुबन में बाप आते। अगर वहाँ संगठन में देह अभिमानी आत्माएं बैठी होंगी तो वो मधुबन नहीं हुआ। जहाँ आत्मा में, आत्मिक रूप में बैठे होने वालों का संगठन होगा वो परमात्मा बाप का मधुबन है। मीठी मीठी स्टेज में रहने वाली जो आत्माएं हैं, जो कभी कड़वाहट नहीं फैलाती, क्या कभी ऐसे वाइब्रेशन नहीं फैलाती जिससे एक दूसरे को कड़वाहट पैदा हो जाए, तो ऐसा संगठन क्या है? मधुबन। मधुबन में बाप आते हैं, साधारण तन में बैठे हैं, उनका नाम है ब्रह्मा। ब्रह्मा नाम है?
है ना, है।
ब्रह्मा नाम थोड़े ही है, ब्रह्मा के चार पांच मुख दिखाए जाते हैं। कितने मुख दिखाए जाते हैं?
चार पांच।
पांच मुख दिखाए जाते हैं। पांच मुख कैसे? वो तो भक्ति मार्ग में बनाए हैं तो यादगार तो जरूरी यहाँ की होनी चाहिए। पांच मुख कैसे? यज्ञ के आदि में जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बनकर के बैठते थे, वो यज्ञ के आदि के माता पिता, क्या आदि के माता पिता, जिनमें परमात्मा शिव ने प्रवेश करके ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों को क्लियर किया, तो वो भी दोनों ब्रह्मा के मुख हैं।
गीता माता राम बाप,
हाँ, दोनों ब्रह्मा के मुख हुए। और फिर वही आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद फिर दोबारा जन्म लेती है, और दोबारा जन्म लेकर के फिर एडवांस पार्टी में फिर प्रत्यक्ष होती है। तो दो चेहरे वो हो गए, तो और दो मिलकर के चार हुए ना, दो अंत के, दो आदि के, और बीच में एक ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा बीच में एक टेम्परेरी रथ हुआ ना, तो पांच मुख हुए।
पंचानन,
हाँ, पंचानन कहा जाता है, चतुरानन कहा जाता है, आनन माने मुख। ब्रह्मा को पांच मुख दिखाते हैं और चार मुख दिखाते हैं। एक मुख कहते हैं काट दिया गया,
ब्रह्मा का एक मुख के दूसरा बोले तो
है ना, कोई कहा मुख काट दिया जाए तो नीचे का देह देह रह जाएगी है? और मुख माने आत्मा अलग हो गई, तो जिसकी आत्मा अलग हो गई शरीर से, देह बांध से, वो हुआ शंकर। शंकर को देह अभिमानी कहेंगे या आत्मा अभिमानी कहेंगे? तो आत्मा अभिमानी हो गया, तो वो ब्रह्मा का एक मुख कट गया, उसको ब्रह्मा नहीं कहेंगे, क्या? शंकर को प्रजापिता ब्रह्मा भी नहीं कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे? उसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा नहीं, वो तो शंकर हो गया। शंकर और शिव को मिला के एक कर दिया, क्यों कर दिया? शिव और ब्रह्मा को मिला के एक क्यों नहीं कर दिया? शिव और विष्णु को मिला के एक क्यों नहीं कर दिया?
शंकर का थर्ड कांड दिया गया,
हाँ, वो आत्माभिमानी बन गया। तो जो आत्माभिमानी बन गया वो आत्मा सो
परमात्मा।
ऊपर क्या बताया? ऊपर बताया ना, आत्मा सो परमात्मा, वो सन्यासी कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो उन्होंने किसकी शरीर शरीकत कर ली, किसको फॉलो कर लिया? शंकर को फॉलो कर लिया। वो कहते हैं कि हम भी आत्मा सो परमात्मा, लेकिन वास्तव में आत्मा सो परमात्मा बनने वाला तो एक ही है, एक मुकर्रर रथ है जिसमें वो सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, और उसके प्रवेश करने के कारण वो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाता है। तो बताया, इस मधुबन में साधारण तन में बाप बैठे हैं जिसका नाम ब्रह्मा है, क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमारियां हो। क्या? ब्रह्मा के कुमार और कुमारियां कब बनते हैं? तब बनते हैं जबकि वो प्रजापिता ब्रह्मा भी मौजूद हो और ब्रह्मा भी मौजूद हो, माने माता और पिता दोनों मौजूद हो तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कही जाए। जिनको अपने बाप का ही पता नहीं
तो कैसे ब्रह्मा कुमार,
तो फिर वो ब्रह्मा कुमार कैसे कही जा सकते, वो ब्राह्मण कुमार नहीं है, क्या है,
छिद्रा कुमार।
हाँ, जब बाप को ही नहीं जानते तो जो बच्चा ये कहे कि हमें अपने बाप का नाम नहीं मालूम, या कोई बच्ची ये कहे हमें अपने बाप का नाम नहीं मालूम, तो अच्छा माना जाता है क्या?
नहीं,
नहीं।
क्या माना जाता है?
खराब।
क्यों खराब माना जाता है?
क्योंकि बाप बिना बच्चा कैसे होता है?
बच्चा कैसे होता है? अरे कैसे भी हो गया होगा इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो गए, उनसे पूछो तुम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हो, ब्राह्मण ब्राह्मणियां कहते हो, तुम्हारा बाप कहाँ है? मुरली में भी पूछा एक जगह, क्या पूछा?
बाप कहाँ गया?
हाँ, मुरली में भी एक पूछा है एक जगह, उन ब्राह्मणों से पूछो
तुम ब्राह्मण है,
तुम ब्राह्मण अपने को कहते हो तो तुम्हारा ब्रह्मा बाप कहाँ है? तो सूक्ष्म वतन में तुम कहाँ ध्यान टपक पड़े, बिना बाप के बच्चे कैसे पैदा हो गए?
सूक्ष्म वतन ऊपर है
तो फिर समझाना पड़े कि वास्तव में अब प्रजापिता ब्रह्मा और ब्रह्मा
कुमारी,
हाँ, जिनसे माँ बाप से पैदाइश हो रही है, वो असली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ अभी तैयार हो रही हैं, बेहद के मधुबन में तैयार हुए पड़े हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, वास्तव में तुम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ है न कहो, क्या कहो? प्रजापिता ब्रह्मा। तुम अपने नाम के साथ सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहोगे, हम अम्मा के बच्चे हैं, अम्मा के बच्चे हैं, तो कोई को संशय पैदा हो जाएगा, हैं? कहीं रंडी पुत्र तो नहीं है इसलिए अपने बाप का नाम नहीं बता रहा है, इसलिए क्या करो तुम प्रजापिता शब्द
आगे लगाओ।
हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हैं, सबको ये समझाओ, क्या समझाओ?
हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया
है। हाँ, सबको ये समझाओ, बीके के आगे प्रजापिता अक्षर ना आने से बड़े मुझ हो गई है, क्या पब्लिक के लोग मुझ गए हैं कि ये कैसी सृष्टि पैदाइश हो रही है रंडी पुत्रों की, है? ये अपनी अम्मा का नाम बताते हैं और बाप का नाम बताते नहीं, बड़े मुझ गए हैं। 7-7-65 खड़ी का दूसरा पीर, प्रजापिता अक्षर ना आने से बड़ी मुझ हो जाती है, प्रजापिता अक्षर ना पढ़ने से मनुष्य समझ नहीं सकेंगे, क्या नहीं समझ सकेंगे कि ये औरत बाप की संतान है या नहीं है, या कोई नाजायज बाप से पैदाइश हुई है इनकी,
धनी दोरी है क्या नहीं?
हाँ, इनका कोई धनी दोरी है या नहीं है? प्रजापिता को तो सभी जानते हैं, जो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, कोई भी धर्म के हो, सत्य के आदि पुरुष को तो सभी मानते हैं। हिंदुओं में उनको आदि देव कह दिया है, तुम आदि देव है, पुरुष है, पुराण शंकर जी की स्तुति में बोला है ना, वो जगत का पिता है,
जगत माता पिता शंभु भगवान
है। और मुसलमानों में उसको आदम का है, क्रिश्चियंस में उसको एडम कहा है, सत्य के पहले पुरुष को आदम को, तो पहले पुरुष को एडम कहा है, ब्रह्मा को भी सूक्ष्म वतनवासी समझ लेते हैं, क्यों क्यों समझ लेते हैं, क्या गलत समझ लेते हैं? अरे प्रजापिता तो प्रजा के साथ ही रहता है, ब्रह्मा भले सूक्ष्म वतनवासी हो जाए, ब्रह्मा भले सुशरीर छोड़ जाए, लेकिन प्रजापिता तो इस धरती पर अंत तक रहेगा। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे तो समझेंगे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये बरोबर है, क्या जनरल पब्लिक के लोग भी इस बात को समझेंगे कि ये अपन को प्रजापिता कैसे होता है, अरे कैसे भी हो तो ये जरूर बरोबर है अम्मा बाप की संतान। और नहीं, अगर तुम ये कहेंगे कि हम तो ब्रह्मा कुमार है, ब्रह्मा कुमारी है, तो लोगों को संशय पड़ेगा, क्या संशय पड़ेगा?
बिना बाप के बच्चे,
हाँ, बिना बाप के बच्चे तो होते नहीं, कोई न कोई बाप तो जरूर रहा होगा, लेकिन कोई नाजायज बाप रहा हूं। इसलिए पूछा जाता है प्रजापिता से आपका क्या संबंध है, ये बात क्यों पूछी जानी जरूरी है। कोई भी कहे कि हम ब्रह्मा कुमार हैं, तो उनसे कहो कि परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है और प्रजापिता से आपका क्या संबंध है। संबंध है तो संबंध शरीर के साथ होता है या सूक्ष्म शरीर में होता है या आत्मा का संबंध होता है। संबंध माने समान बंधन है, एक शरीरधारी हो और दूसरा सिर्फ आत्मा हो या सूक्ष्म शरीरधारी हो तो संबंध कहा जाएगा
नहीं।
तो संबंध पूछना चाहिए। पूछा जाता है प्रजापिता से आपका क्या संबंध है, पूछो तो कहेंगे कि प्रजापिता तो हमारा बाप है। तो बाप है तो कहाँ है
बताओ,
बाप है तो बताओ तुम्हारा बाप कहाँ है। पिता अक्षर तो पहले है ही, जब पहले पिता अक्षर है शिव को परम पिता परमात्मा कहते हैं और कोई का पिता नाम नहीं है। क्या शिव को परम पिता परमात्मा कहते हैं? परम पिता शब्द पहले क्यों लगता है, परमात्मा बाद में क्यों लगता है?
सभी आत्माओं का पिता है,
है?
सभी आत्माओं का पिता है।
हाँ, पहले तो आत्मा है फिर शरीर है, तो आत्माओं का पिता है परम पिता, इसलिए परम पिता शब्द पहले लगता है। और आत्माओं के बीच में जो परम पार्ट बजाने वाला है वो बाद में है, पहले पिता फिर बच्चा। शिव बाप का पहला बच्चा कौन?
प्रजापिता।
तो पहले पिता फिर बच्चा। तो अब तुम जान गए हो, एक है पारलौकिक पिता और दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा, ये हमारे दो बाप हैं, एक पारलौकिक बाप और एक अलौकिक बाप। लौकिक बाप को तो जानते ही है, तुमने तीनों पिताओं को अभी समझ लिया, इस शरीर को जन्म देने वाला बाप और आत्मा को जन्म देने वाला बाप और गोद लेने वाला बाप, तीनों पिताओं को समझा है। और कोई दुनिया में नहीं जानते हैं, सतयुग में भी पारलौकिक बाप को नहीं जानते। क्या लौकिक बाप को वहां भी जानते हैं, पारलौकिक बाप को अलौकिक बाप भी वहां कोई नहीं जानेगा, वहां उनका एक पिता होता है। कहां सतयुग में देवताओं का एक बाप होता है। अभी संगम पर तुम्हारे तीन बाप हैं। क्या संगम कब तक? जब तक तीन बाप हैं तो संगम में हो। वो ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या कहते हैं, हम कौन से युग में? संगम युग में। अगर तुम संगम युग में हो तो तुम अपने तीन बाप का परिचय दो और संबंध बताओ और उनका एड्रेस दो।
नहीं मालूम ऐसा कहते हैं
है?
नहीं मालूम ऐसा।
नहीं मालूम तो तुम अपने ब्रह्मा कुमार कहना बंद करो।
तो उसके साथ झगड़ा करे तो वो उसका जोर बड़ा है पैसों से।
तो कोई बात नहीं, तुम किनारा कर जाओ। कोई को क्रोध आता है तो बाबा ने क्या कहा, कोई लाल पीली आंखें करता है तो वहां से खिसक जाओ, किनारा कर जाओ, लड़ाई थोड़ी करनी है। तो तीनों ही पिताएं संगम पर हो सकते हैं। क्या कहा, ये खास बात बता दी। अगर संगम है तो कितने पिताएं होने चाहिए प्रैक्टिकल में? तीन बाप होने चाहिए। अगर कोई कहे कि हम संगम युग में हैं और हम ब्राह्मण हैं, तो उन ब्राह्मणों से कहो कि तुम अपने तीन बाप बताओ, पहले तीन बाप बताओ और तीनों बाप का एड्रेस बताओ। अगर तीनों बाप का तुम एड्रेस बताते हो, तीनों बाप तुम्हारे जिंदा है, मौजूद है, चलो मौजूद न भी हो, किसी का लौकिक बाप शरीर छोड़ गया हो तो उसका फोटो तो होगा ही, वो तो हो सकता है, लेकिन कम से कम अलौकिक बाप और पारलौकिक बाप जरूर होना चाहिए। तो तीनों ही पिताएं संगम पर हो सकते हैं और किसी युग में नहीं हो सकते, फिर कभी नहीं हो सकते। एक है ऊंचे ऊंचे बाप जिससे वर्षा मिलता है। तीनों बापों में सबसे ऊंचा बाप कौन है? पारलौकिक बाप। शिव बाप है ऊंचे ऊंचे जिससे वर्षा मिलता है, तो उसका भी एड्रेस तो होना चाहिए ना जिससे वर्षा मिलना है। वर्षा कोई हवा में लेना है या प्रैक्टिकल में लेना है?
प्रैक्टिकल में।
प्रैक्टिकल में सुख शांति का वर्षा लेना है तो कोई तो राजधानी बना के जाएगा ना। वो धर्म पिताएं तो सिर्फ धर्म स्थापन करके जाते हैं, और हमारा बाप पारलोक के कैसा आया हुआ है, सिर्फ धर्म ही नहीं स्थापन करके जाता है लेकिन राजधानी स्थापन करके जाता है। सुख की दुनिया की सतयुग की राजधानी स्थापन करके जाएगा, तो जो राजधानी स्थापन करके प्रैक्टिकल में जा रहा है वो प्रैक्टिकल बाप शरीर से द्वारा चाहिए ना, बिना शरीर के कैसे प्रैक्टिकल राजधानी स्थापन करेगा। तो बोला वो है ऊंचते ऊंच बाप जिससे वर्षा मिलता है, ऊंचते ऊंच और नीचते नीच, ये परमधाम की बात है या साकार सृष्टि की प्रैक्टिकल बात है? ये ऊंचते ऊंचे और नीचते नीचे कहाँ की बात है? साकार सृष्टि पर ऊंचते ऊंच, इससे ऊंचा ये, इससे ऊंचा ये, इससे ऊंचा ये, इस सृष्टि पर आ जाएगा। परमधाम में तो कोई ऊंचे नीचे का सवाल होता ही नहीं। तो ऊंचते ऊंच बाप है उनसे वर्षा मिलता है, दूसरा बाप ब्रह्मा है जिससे बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। क्या दूसरा बाप ब्रह्मा का भी टाइटल होता है? कोई का बाप मर जाता है क्या? कोई माँ है और उसका पति मर जाए तो पांडे, श्रीमती पांडे, पांडे किसका नाम हो गया? श्रीमती जी का नाम पांडे हो गया। पांडे जी ने शरीर छोड़ दिया तो उनका टाइटल मिल गया श्रीमती जी को, श्रीमती जी पांडे के बच्चे हैं। तो ऐसे ही यज्ञ के आदि में प्रजापिता ने शरीर छोड़ दिया तो प्रजापिता का टाइटल दादा लेखराज ब्रह्मा को मिल गया। तो दादा लेखराज ब्रह्मा माँ भी हुए और टाइटल धारी बाप भी। तो दूसरा बाप ब्रह्मा जिससे बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली गाय हुई है क्या? ये गायन है। क्या गायन है? ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा की मुख वंशावली क्यों गाई हुई है?
ब्रह्मा के मुख से पैदा।
प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली गाई हुई है क्योंकि ब्रह्मा के मुख से परमात्मा शिव ने ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान को जिन्होंने अपने जीवन में धारण किया दूसरों को कराया वो हुए प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा। वो ब्राह्मण लोग सिर्फ कहते हैं कि हम तो ब्रह्मा की औलाद हैं। क्या कहा?
हम तो ब्रह्मा की औलाद हैं।
वो सिर्फ कहते हैं हम किसकी औलाद हैं?
ब्रह्मा
की औलाद हैं, परंतु ऐसे नहीं समझते कि हम ब्रह्मा के मुखवंशावली हैं। क्यों नहीं समझते?
बेहद में दृष्टि जाती है।
क्या बेहद में दृष्टि नहीं जाती? उनकी बेहद में ये दृष्टि नहीं जाती कि मुख की बात को जो माने, ब्रह्मा के मुख की बात को माने तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, और ब्रह्मा के मुख की निकली हुई बातों को नकार दे, हम इन मुरलियों को नहीं मानते तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही नहीं हुआ। जो मुरली की बात को माने, ब्रह्मा मुख की बात को माने तो ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा मुख की बात को न माने तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण काय का? वो मानते किसको है? वो मानते हैं कोई को अनुभव सुनाएंगे तो हम ब्रह्मा बाबा की गोद में गए, ब्रह्मा बाबा ने हमको ऐसे खिलाया, उन्हें गोद याद आती रहती है तो गोद को कुख कहा जाता है। तो जिन्हें गोद याद आती रहती है, गोद की बातें सुनाते रहते हैं, वो कुख वंशावली ब्राह्मण शास्त्रों में गाये हुए। वो क्या, कौन से ब्राह्मण हुए? कुख वंशावली। उनको मुख की निकली बातें याद ही नहीं आती। जिस समय ब्रह्मा के द्वारा प्रैक्टिकल में उन्होंने ब्रह्मा मुख की बातें सुनी थी तो उन पे ध्यान ही नहीं दिया, चेहरे को देखते रहते थे, बड़ा गोरा है, बड़ा चिट्ठा है, बड़ा लंबा है, चौड़ा है, वो शरीर याद आता रहता। तो देह को याद आने से वो हो गए कुख वंशावली। और जिन्होंने देह का सुख नहीं लिया, क्या जिन्होंने देह का सुख नहीं लिया, उसके मुख से निकली हुई बातों पर ज्यादा गौर किया, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातों पर ज्यादा मनन चिंतन मंथन किया, और दूसरी आत्माओं को मनन चिंतन मंथन कराने में सहयोग दिया, वो हो गए ब्रह्मा मुखवंशावली। मुरली से प्यार तो मुरलीधर से प्यार, मुरली से प्यार नहीं तो मुरलीधर से प्यार कहेगा। तो बताया कि वो ब्राह्मण ब्राह्मण सिर्फ कहते हैं कि हम ब्रह्मा की औलाद हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, परंतु ऐसे नहीं समझते कि हम ब्रह्मा के मुखवंशावली। ये नशा उनको नहीं है, मुखवंशावली होने का नशा नहीं है उनको, कुखवंशावली होने का नशा है। भले मुख से नहीं कहते हम कुखवंशावली है, लेकिन प्रैक्टिकल में अंतर से समझते हैं। उनको याद क्या आती है 18 जनवरी के दिन, उनको 18 जनवरी के दिन वही ब्रह्मा की कुख ब्रह्मा बाबा की याद आती है। इसलिए इस साल बाबा ने ब्रह्मा बाबा ने एक फैसला कर दिया है, जब हम 18 जनवरी को आएंगे तो 18 जनवरी को खास याद करेंगे साकार की, और कोई दिन करें न करें लेकिन एक दिन 18 जनवरी पक्का है। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा तुम्हें बार बार कुख की याद आती है, और हमको हमारे मुख के द्वारा परमात्मा शिव बाप ने बोला कि ब्रह्मा के तन को नहीं याद करना, ब्रह्मा का चेहरा भी याद नहीं करना चाहिए, ब्रह्मा का चित्र भी नहीं रखना चाहिए, ब्रह्मा को याद करेंगे तो पतित हो पड़ेंगे। समझाने के लिए चतुर्मूर्ति के चित्र में ब्रह्मा का चित्र है ही, जो भी चार चित्र हैं मुख्य उनको समझाने के लिए ब्रह्मा का चित्र रखा हुआ है, तो अलग से चित्र बनाने की कोई दरकार नहीं है। लेकिन देहधारी गुरुओं ने कहा अरे ब्रह्मा का अगर चित्र हटा देंगे तो फिर हमारी कौन पूजा करेगा, हमारा तो नाम निशान मिट जाएगा है। इसलिए ब्रह्मा का चित्र हम रखेंगे तो हमारे फॉलोअर्स हमारी पूजा करेंगे, हमारा चित्र रखेंगे। इसलिए उन्होंने उल्टा ही काम किया, क्या उल्टा काम कर लिया। तो अब बाप कहते हैं तो वह है कुखवंशावली ब्राह्मण, मुखवंशावली सिर्फ इस समय ही होते हैं, क्या मुखवंशावली सिर्फ इस समय होते हैं, किस समय
संगम युग,
कौन से संगम युग में होते हैं, वो पुरुषोत्तम संगम युग पर होते हैं जहाँ पुरुषों में, पुरुष माना आत्मा, आत्माओं के बीच में उत्तम पाठधारी जो प्रजापिता है, जो पुरुषार्थ करके प्रजापिता से नारायण बनता है, वो प्रत्यक्ष हो जाए। जब तक वो प्रत्यक्ष नहीं हुआ है तब तक पुरुषोत्तम संगम युग नहीं कहा जा सकता। तो मुखवंशावली सिर्फ इस समय ही होते हैं, किस समय, जब तीन पिताएं प्रैक्टिकल में मौजूद हों, लौकिक बाप, अलौकिक बाप और पारलौकिक बाप। शिव के लिए मुखवंशावली नहीं कहेंगे, क्या ब्रह्मा के लिए तो कहेंगे मुखवंशावली, प्रजापिता ब्रह्मा के लिए मुखवंशावली कहेंगे, क्यों नहीं, ब्राह्मण बने बिगड़ प्रजापिता था क्या, मुरली में बोला प्रजापिता भी जब तक ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद न बने तब तक प्रजापिता नहीं हो सकता। माने यज्ञ के आदि में कोई माता थी, माता माने असली ब्रह्मा बड़ी माँ थी, जिसके मुख में परमात्मा शिव ने प्रवेश करके पहले प्रजापिता को सुनाया, तो उसने कानों से सुना, साक्षात्कार की बातों को कानों से सुना, तो वो ब्राह्मण हो गया, ब्रह्मा की औलाद हो गया ब्राह्मण। सुनने सुनाने का काम तो हो गया, लेकिन समझने समझाने का काम, वो जो ज्ञान का फाउंडेशन डालने का काम है, वो फिर पिता ने किया, प्रजापिता के थ्रू वो काम संपन्न होता है। माता ये काम भी नहीं, ज्ञान का बीज बोने का काम माता तो नहीं करती, तो सुनने सुनाने का काम, भक्ति मार्ग का फाउंडेशन माता के द्वारा पड़ा, और ज्ञान समझने समझाने का फाउंडेशन पिता के द्वारा पड़ा। तो बोला शिव के लिए मुखवंशावली नहीं कहेंगे, मुखवंशावली किसके लिए कहेंगे, प्रजापिता और ब्रह्मा के लिए कहेंगे, इनको सब गॉड फादर मानते हैं, इनको शिव बाप को सब गॉड फादर मानते हैं। तो तीन पिताएं हैं संगम पर, संगम पर तीन पिताएं हैं, ये एक्यूरेट प्रैक्टिकल में है, अंडरलाइन करो इस बात को, ये तीन पिता हैं, एक्यूरेट हैं और प्रैक्टिकल में है। क्यों भैया? जिसका लौकिक बाप मर गया हो तो प्रैक्टिकल में कैसे कहेंगे? तीनों पिताएं कहाँ हुए प्रैक्टिकल में? एक तो मर गया, जैसे वो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं कि हमारा ब्रह्मा बाप तो
मर गया,
गया? तो उनका तो अलौकिक भी गया और लौकिक भी गया,
दोनों गए।
अब वो सिर्फ पारलौकिक को लिए बैठे हैं बिंदी को। बाप कहते हैं नहीं, संगम युग कहा ही तब तक जाएगा जब तक तीन बाप तुम्हारे मौजूद हो। कौन कौन से प्रैक्टिकल में होने चाहिए? लौकिक बाप, अलौकिक बाप और पारलौकिक। अच्छा, इस देह को जन्म देने वाला किसी का बाप शरीर छोड़ गया, माता ही तुम्हारा बाप जिंदा है तो तुम्हारा लौकिक बाप तो है नहीं, तुम तो संगम युग में नहीं है, है? हो कि नहीं? कैसे हो? तुम्हारे तीन बाप कहाँ हैं?
फोटो है,
फोटो है ना? वो ब्रह्मा कुमारी अभी कहेंगे हमारे ब्रह्मा बाप का फोटो है।
फोटो है
बाबा तो कहे प्रैक्टिकल में होने चाहिए,
तीनों बाप
प्रैक्टिकल में होने चाहिए। हाँ तो समझो इस बात को। बाबा ने कहा तुम ऐसे समझो कि जो शरीर को जन्म देने वाला बाप था वो तो था है, लेकिन अब हमने नया जन्म ले लिया, अब हमने गोद ले ली। किसकी गोद ले ली? प्रजापिता की। प्रजापिता ने हमको गोद में लेकर के ब्रह्मा की गोद में छोड़ दिया, तो वो प्रजापिता तुम्हारा लौकिक बाप भी हो गया। क्या? अगर तुमको घर वाले जो बाल बच्चे हैं धक्का दे दें तो प्रजापिता तुमसे ये नहीं कहेगा नहीं हम तुमको धक्का दे रहे हम नहीं रखेंगे, धक्का देगा तो फिर तुम्हारा बाप कहेगा हुआ है? कोई भी कन्या हो अगर उसको ससुराल वाले धक्का दे देते हैं तो वो कहाँ जाती है? बाप के घर में जाती है कि नहीं जाती है? तो बताओ, तुम तो कहती है तुम्हारा लौकिक बाप है ही नहीं दुनिया में, है कि नहीं? नहीं है,
है?
कभी कहती हाँ है, कभी कहती नहीं। और ब्रह्मा कुमारियों के साथ में ज्यादा बैठती तो नहीं हो? ब्रह्मा कुमारियों संग लग गया हो है? क्यों बोलो? अरे वो पूर्व जन्म की बात हो गई क्या? हाँ नई गोद ले ली, तो जब गोद ले ली जाती है किसी बच्चे की तो वो भी तो इसी दुनिया में गोद ली जाती है ना। जो गोद लेने वाला बाप है वो भी तो लौकिक दुनिया का बाप कहा जाएगा ना, तो वो लौकिक बाप भी है और इस लोक का है कि नहीं? प्रजापिता, प्रजापिता इस लोक का बाप भी है और अलौकिक बाप भी है, क्योंकि ज्ञान सुनने और सुनाने की माध्यम है। और दूसरा तीसरी बात, उसमें सुप्रीम सोल शिव बाप भी प्रैक्टिकल में कार्य कर रहा है, कि वो जो ज्ञान देता है वो ज्ञान और कोई मनुष्य मात्र तो दे नहीं सकता। तो ये एक्यूरेट प्रैक्टिकल में है कि तीनों बाप संगम युग पर अभी मौजूद है। तीन पिताएं हैं शिव बाबा के और प्रजापिता ब्रह्मा के, सब संतान क्या? सारी मनुष्य सृष्टि निराकार को तो सब मानते हैं, है? लेकिन साकार को जब तक पहचाना नहीं है तब तक मानते नहीं। लेकिन 5000 वर्ष पहले जो हुआ था सृष्टि का पिता, उसको तो सब मानते हैं। तो कहा प्रजापिता को सारी दुनिया मानती है और शिव को भी सारी दुनिया अपना बाप मानती है, सारी दुनिया उनकी संतान है। लौकिक की तो है ही है, ये पक्का याद करना चाहिए कि हमको तीन बाप हैं। तो समझाया जाता है परमपिता शिव बाबा का कोई बाप रचयिता नहीं है। क्या कहा है? किसका रचयिता कोई नहीं है?
परमपिता परमात्मा।
परमपिता का रचयिता नहीं है या परमपिता परमात्मा बाप का रचयिता नहीं है?
परमपिता का।
परमपिता का रचयिता कोई नहीं, वो तो है, वो तो बात सही है। परमपिता का रचयिता तो कोई नहीं है, वो तो रचयिता की बात ही नहीं, क्योंकि रचना आत्मा की रची नहीं जाती। वो सुप्रीम सोल तो आत्मा है, आत्मा कभी रची जाती है क्या? वो तो अनादि है, उसके रचने का सवाल ही नहीं। तो सुप्रीम सोल का बाप होने का तो कोई सवाल है ही नहीं, लेकिन हम आत्माएं जो हैं, हम आत्माओं का बाप तो सुप्रीम सोल है, लेकिन वो रचने की बात नहीं है। आत्माएं भी अनादि है, और सुप्रीम सोल बाप भी अनादि, उसमें रचना रचयिता की बात नहीं आती। रचना रचयिता की बात वहाँ आती है जो चीज न मौजूद हो वो पैदा हो जाए। क्या? जैसे कहा जाता है कुम्हार घड़े का रचयिता है।
घड़ा पहला नहीं होता,
पहले घड़ा नहीं था, मिट्टी थी, घड़ा तो नहीं था,
नहीं।
लेकिन फिर कुम्हार ने क्या किया, घड़ा बना दिया। तो ऐसे ही सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर जब आता है तो प्रजापिता में प्रवेश करके हम आत्माओं को बच्चा बनाता है, बच्चा और बच्ची। तो कहा जाता है कि प्रजापिता हुआ रचयिता और हम बच्चे आत्माएं हुए रचना, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। ओम
शांति।
आत्मा की उत्पत्ति परम आत्मा में से होती है?
है?
आत्मा की उत्पत्ति परम आत्मा में से होती है?
उत्पत्ति होती नहीं, आत्मा तो अनादि, अभी तो बताया।
तो फिर दोनों भाई भाई नहीं हो सकते?
जो नहीं भाई बहन इसलिए नहीं हो सकते, हमें अपना पता ही नहीं है। जब वो आके बताता है तब हमें अपनी पहचान होती है। वो भी ब्रह्मा के द्वारा बताता है, अम्मा के द्वारा। क्या? बाप की पहचान कौन देता है? माँ देती है। तो माँ के द्वारा वो आकर के हमको अपनी पहचान देता है, तभी तो पता चला कि हम आत्मा हैं। पहले तुम जानते थे हम ज्योतिबिंदु आत्मा हैं?
नहीं।
तो जब तुमने जाना तभी तो पैदा हुए?
तभी जन्म।
नहीं, आत्मा थी तो पहले ही, ये रोशनी तो आंखों में से पहले से ही निकल रही थी कि नहीं? तो आत्मा तो थी,
आत्मा तो थी,
लेकिन पहचान
नहीं।
तो पहचान देने के कारण वो हमारा सुप्रीम सोल बाप
पहचान देता है।
क्या? जब अनादि में,
हाँ,
तो पहला कौन सा युग आया होगा?
फिर वही बात, दो चीजें, तीन चीजें अनादि हैं, उनकी आदि अंत नहीं होती। एक तो आत्मा की आदि अंत नहीं है, वो हमेशा से यही है। कब पैदा हुई ये नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही ड्रामा कब शुरू हुआ ये नहीं कहा जा सकता, कब शुरू हुआ। और सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के बाद सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये चक्कर घूमता है, ये अनादि चक्कर है। क्या?
अनादि चक्कर,
ये इसकी शुरुआत नहीं कही जा सकती कभी। हाँ, ऐसे कह सकते हैं कि जो कुम्हार का चाक होता है वो तो कुम्हार डंडा लगाता है तब घूमता है, तो वो घूमता रहता है, हैं? कुछ टाइम होता है उसका, 15 मिनट 20 मिनट घूमता रहता है। लेकिन ये ऐसा ड्रामा है कि इसमें वो परम पिता, वो जो कुमार है, वो आकर के ज्ञान का डंडा एक बार लगाता है तो 5000 साल तक घूमता रहता है, फिर वो बंद होने से पहले ही फिर डंडा लगा देता है,
घूमता रहता
है। तो ये ज्ञान का चक्कर लगाता रहता है, घूमता रहता है। क्या आया समझ में?
घूमता है तो ऐसा नहीं कह सकते कि पहला कौन सा भाग होगा, घूमता ही रहता है,
घूमता ही रहता है,
लगाया डंडा जो।
और वो स्वयं ही जो शरीर नहीं धारण करते,
वो भी शरीर धारण कर ले तो वो भी फंस जाएगा।
सबको काटने के बाद
तो निकालने वाला कौन रह जाएगा?
निकालने वाला एक ही रहेगा।
वो एक निकालने वाला रहने देगा कि नहीं?
हाँ।
उसको भी अपने चम्मे में लपेट ले।
वो एक आकर सबको निकालता है।
घर में रहते थे बहुत प्रश्न करता है, ऐसा ऐसा
अच्छी बात है ना, बात समझ में नहीं आएगी तो फिर दूसरों को समझाया कैसे जाएगा?
और जो धर्मराज सजा देते हैं,
हाँ,
वो सिर्फ आत्मा को ही देते हैं या शरीर? आत्मा
शरीर धारण करा के सजा दूंगा, ऐसे नहीं समझना कि बस ऐसे ही अंदर अंदर भुगत लेंगे।
आत्मा से तो कोई अनुभूति होती हो तो
फिर जो ब्रह्मा कुमार कुमारी शरीर छोड़ते चले जा रहे हैं वो तो बड़े मजे में कहेगा वाह हम तो मुक्त हो गए, लेकिन नहीं, उनको भी शरीर धारण करना पड़ेगा, कोई शरीर में प्रवेश करके उनको भी सजाएं खानी पड़ेंगी।
माना शरीर को जब सजा लगती है तो आत्मा को उसकी अनुभूति होगी,
अनुभूति होगी। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी शरीर छोड़ दी जाती है, शरीर छोड़ रही है ना, तो वो ये समझती हो कि चलो हम धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे, ऐसे नहीं है। वो भी किसी शरीर में प्रवेश करके सजाएं खाएंगी, शरीर धारण करा के सजा देता हूँ, ऐसे नहीं सजा देता हूँ जो अंदर अंदर संकल्पों से खत्म हो जाए।
कैसा कराते
फिर वही उत्पत्ति?
पांच तत्व
कभी उत्पत्ति नहीं होती इनकी,
नहीं उसको
जैसे ये शरीर है, ये शरीर जला दिया जाएगा, राख बन जाएगी, फिर राख में मिल जाएगी, फिर राख के वो ही कण इकट्ठे होकर के फिर जब 5000 वर्ष के बाद का टाइम आएगा तो यही शरीर पैदा
होगा। ऐसा ऐसा ही हो जाता है,
ये साइकिल चलता है इनका,
साइकोलॉजी।
इसमें तो आत्मा परमात्मा में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो आता ही नहीं ना,
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कभी पैदा नहीं होते, वो तो आ, वो नहीं है,
परमाणु तो होते ही रहते
हैं। हाँ, तो परमाणु जैसे हैं वैसे ही ये पांच तत्व जो है वो हमेशा है ही है,
मतलब
कभी खत्म नहीं होते। उन्होंने न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाम दे दिया, यहाँ हिंदुओं में उसको पांच तत्व नाम दे दिया। पांच तत्वों की जो बनी हुई है सृष्टि दिखाई पड़ रही है ना, ये हमेशा है ही है, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। एक तो प्रकृति के पांच तत्व अनादि हैं, आत्माएं अनादि हैं और परमात्मा अनादि, इनकी कभी आदि नहीं होती
है।
रूप बदलते हैं बस, क्या
रूप बदलते हैं।
परम नाम है सुप्रीम सोल बिंदु, इस सृष्टि पाया तो प्रजापिता ब्रह्मा है, फिर शंकर का रूप,
रूप बदलते हैं, ऊर्जा का रोल रूप बदला था, ऊर्जा तो अच्छा ही रहती है, अच्छा ही रहती है,
बाकी वो हमेशा है ही।